ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ननाम्ने गौरत्रिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानस तवैवास्मि तवैवास्मि न जिनामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणं
श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 41 अध्याय हम लोग अभी सुन रहे थे कि अक्रूर जी कृष्ण और बलदेव को साथ लेकर से नंदगांव से मथुरा ला रहे हैं। अक्रूर जब गए नंदगांव में तो कृष्ण के चरण चिन्हों को देख करके उन पर लौट गए और प्रार्थना करने लगे, ये कृष्ण क्या हमें चाचा कहेंगे, प्यार करेंगे, हमारा अभिवादन स्वीकार करेंगे? आज हमारा और भाग्य है कि भले ही कंस की प्रेरणा से हो मैं मथुरा में आया और कृष्ण ब्रज में आया और कृष्ण के चरणों को दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। अभी तक वो ज्ञान नेत्र से देख रहे थे, उनको कुछ ज्ञान था जो नारायण का प्रवेश इनमें कभी कभी होता है, नारायण सम इनके गुण हैं, कहाँ से सुना, गर्गाचार्य इत्यादि ऋषि के से सुना था, इसलिए उनके में उनकी श्रद्धा तो थी और उनको भगवान के समान ही आदर दे रहे थे, उनके चरणों के प्रति ऐसी था और लोग लौट गए और फिर रात में कृष्ण का दर्शन किया और सचमुच में जैसी वो भावना कर रहे थे ऐसे ही कृष्ण और बलदेव जी उनसे मिले, चाचा चाचा कहा और जब उनके चरणों में गिरने लगे तो गिरने नहीं दिया, जैसे कि किसी पूज्य व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, रोक लिया और गले में उनको लगा लिया, आंखों में से आंसू झरने लगे, हृदय उनका द्रवित हो गया। इसके बाद में उन्होंने कहा उनके संबंध में, वसुदेव देवकी के संबंध में उत्तेजित किया उनको, आप वसुदेव और देवकी के लड़के हैं, और फिर ये सब जो बातें हुई बीच वाली मैंने आप लोगों से बतलाया। जब अक्रूर घाट पर आए, जमुना हृदय में आए, ब्रह्महृद में जिसको जहाँ पर यज्ञ पत्नियाँ इत्यादि थी वहाँ आए, तो जमुना में वो स्नान करने के लिए गए और दृश्य के संबंध में बतलाया जो वहीं से कृष्ण और बलदेव जो ब्रज वाले थे लौट गए और वसुदेव जी वहां पर रथ में बैठ गए, वसुदेव नंदन कृष्ण और बलदेव जी बैठ गए और अब उनको अनुभूति हुई, समाधि में देखा उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, ये कृष्ण बलदेव और कुछ नहीं ये उनके इष्ट देव ही हैं, वो गर्भोदशायी विष्णु जो सबसे बढ़कर के तत्व हैं, उनसे बढ़कर के कोई तत्व नहीं है। उन्होंने कृष्ण को परतत्व नहीं समझा। अब उनको हुआ कि कृष्ण कौन है, हमारे आराध्य देवी तो हैं, वो गर्भोदशायी विष्णु हैं, शंख चक्र का गदा पद्मलिका उनका मूल रूप है, किंतु ये कृष्ण वही है। अभी अपने रूप को छिपा करके लोगों के सामने ये नर रूप धारण करके आए हैं। अब उनकी अनुभूति कि वो तो यही है। अब उनको ये हुआ कि कृष्ण ये जो हैं हमारे इष्ट देव हैं, अब साजी कंस को मार सकते हैं, धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे और सब काम कर सकते हैं। अब इनको पूर्ण विश्वास हो गया, पहले विश्वास नहीं था उस तरह का, अब उनको विश्वास हो गया कि ये साधारण बालक नहीं, ये तुम जरूर मारेगा उसको, धर्म की प्रतिष्ठा करेगा। अघटन घटन प्रतिष्ठी वाला ही हमारे ये हैं, जिनके नाभि से ब्रह्मा निकले हैं, अब ब्रह्मा ये सब सृजन हुआ है और ये हमारे अनंत देव ही समस्त प्रकृति के आधार हैं। और ये जो तत्व हैं, 26 तत्व हैं, कहा क्या महत्त्व पहला, और उससे निकला हुआ अहंकार, फिर उसे मन बुद्धि अहंकार चित्त, और फिर उसका स्थूल रूप पंचभूत और पंच तन्मात्राएं। पंचभूत क्या, क्षित जल पाओ गगन समीरा, और तन्मात्राएं क्या, ये और फिर पांच इंद्रियां और पांच उसके विषय, ये 10। तो 10 10 20 मन एक ही, और ये एक ये हो गया, ये 24 हो गए। और इसके बाद में प्रकृति और पुरुष, और इसके बाद में जीवात्मा, अंत में परमात्मा। परमात्मा ये परमात्मा कौन है, हमारे वो अनंत जो हैं गर्भोदशायी विष्णु, उन्हीं से ये सब कुछ निकलता है। और इसी रूप में उनकी स्तुति की। कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, ब्रजेंद्रनंदन हैं, गोपीकांत हैं, वृंदावन में रास करने वाले हैं, और ये ऐसे ऐसे लाखों गर्भोदशायी के मूल हैं, इनकी धारणा में भी ये नहीं आया। कृष्ण ही आए हैं हमारे वो आराध्य कृष्ण के रूप में। उनको अभी अब पता पीछे हो सकता है या नहीं भी हो, ये वो कृष्ण है मूल, कृष्ण से बलदेव जी, बलदेव जी से फिर उनका आदित्य चतुर्व्यूह, उसमें में द्वारका में मूल संकर्षण, फिर महासंकर्षण परब्रह्मी में, और महासंकर्षण से कारण दशाई एक, और उनसे अखिल विश्व ब्रह्मांड सब निकला, और उनके कोटि कोटि अंशों में से एक अंश है हमारे आराध्य सहर्ष सीसा पुरुष। अभी तक नहीं जान पाए हैं जो कृष्ण कौन तत्व हैं। ऐश्वर्य मैधुर्य था उसमें, ऐश्वर्य कुछ था, अब पूरा ऐश्वर्य में आ गए। अब उनको ये विश्वास हो गया, ये तो कंस इत्यादि का ही तो क्षण मात्र में उनकी इच्छा से हो सकते ही इनका लीला विलास है। धर्म की प्रतिष्ठा करना, असुरों का दलन करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं, भक्तानाम विनोदायक करोमि द्विविधा क्रिया, ये तो लीला विलास भक्तों का विनोदन करने के लिए कर रहे हैं। वो तो क्षण मात्र में असुरों का दलन कर सकते हैं, पृथ्वी की सारी सृष्टि स्थिति प्रलय को सब समाप्त कर सकते। अब निश्चिंत होकर के अब अपना ये सब कार्य करके निश्चिंत होकर के बड़े गदगद होकर के रोमांचित होकर के और कृष्ण को बलदेव को लेकर के मथुरापुरी आए। इतने में ये जो विलंब हुआ, आनंद बाबा पहले ही छोड़ चुके थे अपने साथियों के साथ और सखाओं के साथ, वो लोग पहले पहुंच गए कहाँ, वृंदावन दरवाजा है पासी में, जहाँ पर की सरस्वती नदी के किनारे, उसको पार करके अंबिका का वो उस समय मथुरा उधर में थी, वहां पर पहुंच करके डेरा लगा दिया एक पेड़ के नीचे यमुना के किनारे, डेरा लगा दिया और सब वहीं कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में अक्रूर जी आए, अक्रूर जी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु मैं ये चाहता हूँ کہ پہلے آپ ہمارے گھر میں پدھاریے اور وہاں آج رات میں رہیے, اور پھر جیسا ہوگا کل یہ رنگ سبھا ہوگی رنگ منچ پر, آپ وہاں پر پدھارے. کرشن جی نہیں, آج میں پتا جی کے ساتھ میں یہیں پر چھاونی میں رہوں گا, ڈیرے پہ رہوں گا, اور یہاں کا کام کچھ کر کر کے تب پھر تمہارے یہاں چلوں گا, ابھی نہیں. بس وہیں پر اپنے پتا جی کے پاس میں رہ گئے, اور وہ اپنی گاڑی چھکڑی لے کر کے جو گئے تھے لوٹ گئے اور کنس کو خبر دیا کہ میں ان کو لے آیا. وہ بہت پرسند ہوا, ٹھیک ہے, اور اپنے پریجنوں سے یہ جتنے اسر تھے پگاسر بکاسر تو یہ تو پہلے مارے گئے, چارون مشتق اور ان لوگوں سے پرامرش کرنا ہے کل کیسے کام کریا جائے, سہج سہج روپ میں پلان بنا, گیٹ پر رکھا جائے متوالے ہاتھی کو, کون سا کبلیا پی کو رکھا جائے اور مہاوت بھی ایسے رکھے جائیں, اور اس کی یدی وہ کچھ گڑبڑ ہو اس کے لیے ساری سینائیں وہاں پر لگا دیے, صرف چنے چنے ہوئے یودھا رہے, اور وہیں پر وہ ہاتھی اس کو پیس ڈالے دونوں کو, پھر کام ختم ہو جائے گا. اور یدی کچھ ہوا تب پھر اکھاڑے میں یدی آ جائے تو چارون مشتق اتیادی سبھی مل کر کے اور میں بھی آ جاؤں گا, بس کوئی بات نہیں, اس کو سماپت کر دیا. پرکلپنا کر لی گئی کنتو ہوئی ہے سوئی جو رام رسی راکھا, کو کر ترک پڑھا وہی سا ہوگا تو وہی جو ہونا ہے. اکرو جی تو وہاں سے چلے گئے. اب کرشن جب پہنچے دوپہر کا سمے میں تو وہاں آئے تھے, وہاں سے دس منٹ اور پندرہ منٹ لگا ہوا یہاں آنے میں. یہاں آ کر کے نند بابا اپنے گھر سے جو لائے تھے مال پوا اور کھیر تیر دودھ سب سبھی سب لوگوں نے مل کر کے کھایا پیا, اور ڈیرے میں ہی انہوں نے وشرام کیا. جب چار پانچ بج گئے کچھ چھایا جیسی ہوئی, کرشن نے کہا پتا جی سے, پتا جی آپ آدیش کریں, یار نگر بھرمن کر رہا ہوں, شام کو نگر بھرمن کر رہا ہوں. نند بھائی کہا اچھا بیٹا جاؤ میں بھی چلوں. نہیں آپ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ سکھا جتنے تیز دام سے دام سبل مدھمنگل اتیادی اور سب گاؤں والوں کو جب متھرا واسی لڑکوں کو پتا چلا جو آئے ہیں کرشن بل دیو آئے ہیں یہ وسودیو جی کے پتر, اب ان کو دیکھنے کی آئی اور سارے نگر میں ایک طرح سے وہ پھیل گئی بات کہ کرشن بل دیو آئے ہیں اور نگر سبھار دیکھنے کے لیے پدھار رہے ہیں. اس سمے میں لوگوں میں اتنی اتسکتا بڑھی کہ گاؤں کی نگر کی جو مہیلائیں تھیں جو وہاں وواہت ہو کر کے ابھی کشوری ہیں وہ تو جھرکھوں پر اوپر میں کھڑی ہو گئی, پھول اور لاج لے کر, لاج ہوتا ہے نا کھیل کھیل لے کر کے اوپر سے پھینکنے کے لیے, اور جتنے وہاں پر لڑکے تھے ایک دم پہنچ گئے کرشن کے یہاں, ہم چلیں گے دکھلائیں گے, ہم چلیں گے دکھلائیں گے. سارا سماج وہاں پر پہنچ گیا جدو بنسیوں کا. ادھر میں جتنے اندھے بھی تھے وہ کہیں گے آج کرشن آ رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی چلنا چاہیے, اندھا اندھے کی لاٹھی پکڑ کر کے آنکھ نہیں رہنے سے بھی دیکھنے جائیں گے, کیا دیکھیں گے اندھا, تبھی اتسکتا ایسی جگہ کہ ہم چلیں گے دیکھنے کے لیے. وہ لوگ بھی چل پڑے, کرشن نگر میں پرویش کیا, نگر میں پرویش کر کے نگر کو دیکھتے ہوئے گلیوں سے راستے سے آ رہے ہیں, اتنے میں انہوں نے دیکھا سب سے پہلا کس کو, رجت جا رہا تھا, رجت جا رہا تھا گدھوں پر نئے کپڑے رنگ کر مہاراج کنس کے لیے لے کر کے جا رہا تھا. کرشن بلدیو جی نے دیکھا, سکھا لوگ جا رہے تھے وہ بھی ساتھ میں تھے, کرشن نے اس کو روک کر کہا جی بھیا ہمارے کپڑے نہیں ہیں, کنس سے ملنے جانا ہے رنگ ساوڑا میں جو جالا ہے تو ہمارے کپڑے تو ایسے ہی ہیں, تو اس میں سے کچھ کپڑے یدی دے دو تو ہم لوگ اس کو پہن کر کے اور وہاں پر رنگ شالا میں پرویش کر ہی جائیں گے. تو اس نے انہوں نے کچھ اپیکشا کی اور کہا جی گوار گوار اور اہروں کے بیٹے ہو کر کے گوپوں کے کبھی دیکھا ہوگا ایسا کپڑا, महाराज कंस का ये कपड़ा खबरदार ऐसा मत खाना, अभी कुछ कह दूंगा तो नालिश हो जाएगी और फिर तुम लोगों को पकड़े हुए मारे जाओगे। और ऐसा योग्य तो तुम हो नहीं, दरिद्र घर के और ऐसे घूमने वाले नंगे, और तुम इन कपड़ों का स्वप्न देख रहे हो। कुछ ऐसी तैसी भी कुछ गाली गलौज जैसे अपमान किया होगा कृष्ण का। तो कृष्ण ने क्या किया, बड़े सहज रूप से मुस्कुराते हुए हाथ थोड़ा सा लगा दिया, बस गिर गया, छूते ही गिर गया। कृष्ण ने तो मैं क्या कुछ छूते ही उसका गिर गया। ये कंस का चर है, कृष्ण से मारा, ऊपर से दिखता दिखाई पड़ता है ये मारा 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 क्या मारा, ये तो शरीर मरेगा ही, किंतु कृष्ण के स्पर्श से हुआ क्या, उसकी आत्मा शुद्ध हो गई, सब कुछ शुद्ध। हतारी गतदायक है ना कृष्ण स्वयं, और ये कृष्ण है कौन, समस्त अवतारों के भी मूल अवतारी स्वयं आदि हैं, सबके अनादि भी हैं, और वो कृष्ण ये मथुरेश कृष्ण भी हैं, वो भी समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, केवल कुछ रस का भेद है, किंतु ये भी वही हैं। बस उसने छूते ही जिनके सुने से आंख के इशारे से उनके अंगों की हवा लगने से ती आदमी का मुक्ति हो जाएगी, बस साथ ही साथ उसके जितने पाप थे वो सब खत्म हो गए। और प्रेम से तो भजन किया था नहीं, इसलिए उसकी बस मुक्ति तक हुई, मुक्ति बस मुक्ति हुई। तब मुक्ति क्या होगी, मुक्ति क्या होगी, ये पुतना और उसके भैया अगासुर और बकासुर जैसे नहीं होगी। क्यों, उसमें कुछ कारण था क्या, वो किसी संबंध को लेकर के मरने गई, मैया बन करके गई, और मैया के ये दोनों भाई हैं, इसलिए इनको स्वरूप ये साई की मुक्ति नहीं हुई, उनको हुई क्या स्वरूप की मुक्ति, और उसको तुम धात्री गति उचित हुआ। अच्छा इसकी गति क्या होगी, आप लोग निर्णय कीजिए। तो साई की मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो यदि होते दूसरे दूसरे स्वरूप तो हो सकता है जो कुछ हो, और भजन साधन तो किया नहीं, लीन तो ऐसा दिखता है किंतु लीन होने पर भी लीन नहीं होता है, जैसे चिड़िया घोंसले में लीन हो गई। तो इसकी साई ये न हो करके कुछ ऐसा ही कुछ रूप देखा ना, तो रूप देख करके चिंतन किया होगा कि नहीं मारते समय में, इसलिए सारूप जैसी हो जाएगी, सारूप तक पहुंच सकता है। लिखा नहीं है कहीं, किंतु कृष्ण इतने दयालु है ना, ये नहीं देंगे, कृष्ण स्वयं नहीं दे सकते, तो इनकी विशेषता क्या रह जाएगी और लोगों से, इसलिए उसको सारूप दे सकते हैं, शास्त्री दे सकते हैं, सालोक्य दे सकते हैं, ऐसा है। सालोक में ब्रज का सालोक नहीं देंगे, वो देंगे तो वो ब्रह्म लोक में उनकी शंकर से थोड़ा ऊपर लेकर के उनको गति दे देंगे। इसके बाद में कृष्ण सखाओं के शाखाओं को बड़ा उल्लास हुआ, उसको वहीं पर छोड़ दिया और आगे और कपड़े ले लिए, गधे जिधर जिधर भागे उनको जो जरूरत थी सब बच्चों ने अपने अपने लिए कपड़े चुन लिया, पहनना भी नहीं लिया, ऐसे ऐसे कुछ बड़े हैं कुछ ऐसे हैं। और थोड़ी देर में चले तो देखा ही पड़ा एक सुदामा दर्जी, सुदामा नाम था, सुदर्शन वो मिला। कितना बजा भाई, समय पर भी ख्याल रखना। अब उसके पास में उपस्थित हुए, देख करके हुआ, अरे भैया हमारे शरीर जैसा माप करके इसको ठीक ठाक कर देगा, ये लंबी लंबी ये अंगरखा नहीं, वो कपड़े दूसरा दुपट्टे, कृष्ण का दुपट्टा और कंस का दुपट्टा तो एक होगा नहीं, तो ये दुपट्टों को भी बराबर काट दो और हमारे जो कुर्ते हैं उसको भी अच्छी तरह से कर दो, और कपड़े भी हैं रेशमी हैं और अच्छे अच्छे हैं राजकीय वस्त्र हैं, हमारे अंगों का जैसा बना दो। बस साथ ही साथ उसने देख करके मुग्ध हो गया, और मुग्ध होकर के देखता है आपके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा, तो उसकी बुद्धि थोड़ी सी कुछ सेवा की बुद्धि रही। क्योंकि वो कुछ वैसे चित्त वृत्ति खाता है, इसकी कुछ सेवा की प्रवृत्ति थी, यदि थोड़ी सी भी सेवा की प्रवृत्ति रहे और कृष्ण से संबंध हो जाए तो उसकी बड़ी ऊंची गति हो जाती है। इसलिए इसने उनके मापे तुले सब कपड़े चपड़े सब ठीक दिए, सखाओं के भी कर दिए, बलदेव जी भी कर दिए, अब तो देकर के बहुत अच्छे सजने लगे अपने आप, और वहां से उसके सिर पर हाथ रख दिए, वो तो कृतकृत्य हो गया, उसका उस जन्म भी बन गया और शिष्य का जन्म भी बन। हो सकता है कि उसको अपने किसी जगह में वैकुंठ इत्यादि में वो उसी का सेवा उसको वहां पर दे दी। गरीब नहीं बेटी, वहां पर स्वाभाविक फूल इत्यादि जो हैं, स्वाभाविक वहां की जो प्रकृति है वो माधुर्य भाव का द्योतक है, और ये जो है राजसी इत्यादि नए नए कपड़े हैं ना, नए नए कपड़े वो ब्रज में तो गैया चराते हैं माधुर्य भाव, अब यहाँ पर वैभव उन्होंने ग्रहण किया, वैभव भाव उन्होंने ये दिखलाया जो यथार्थ में संसार वाले इस वैभव के मालिक नहीं है, इसका भोक्ता तो मैं हूँ, ये भी तो दिखलाऊ मैं ही इसका भोक्ता हूँ, ये नहीं है स्त्रियों का भी भोक्ता नहीं है, पुरुषों का भी भोक्ता नहीं है, असल में मैं शब्दों का उपभोक्ता हूँ, सब विश्व के ब्रह्मांड के समस्त वस्तुओं का मैं उपभोक्ता हूँ, इसलिए उन्होंने उसे दे दिया। अब उसको क्या दिया होगा तो अब यही समझिए, यदि शत्रु भाव से कोई आया उसको भी मुक्ति दे दिया इसको मुक्ति देंगे नहीं, इसको वैकुंठ से नीचे गति नहीं बल्कि इसको गोलोक में दिए होंगे, गोलोक जो द्वारका से नीचा है वहां पर गोलोक की गति दे दी, उनकी सेवा का अवकाश कुछ दिया होगा। तत्पश्चात और आगे बढ़े और भी कितने कितने मिले, कितने में कुब्जा शायद आई चंदन लेकर के और वो जा रही है, मुखमंडल बड़ा सुंदर है, अभी किशोरी है 16-17 वर्ष की, हाथ में चंदन का थाल है, अंगरा के जितने भी हो सकते हैं वो सब लिया, बड़े सुगंध उसमें से आ रहे हैं, वो प्रतिदिन जाती और कंस को अंगराग लगा देती है, उसमें हो सकता है कि मृगनाभी हो, केसर जिसको कहते हैं कस्तूरी हो, केसर हो, ये सब चीजें हो लेकर के जा रही। कृष्ण ने देखते ही मुस्कुरा करके कहा ऐ सुंदरी ये क्या हमको लगा सकती है, और वो देखते ही कि हुआ क्या ठिठक करके खड़ी हो गई और देखती ही रह गई, अरे देखती क्या है हमें लगाएगी, तो उसने कहा आपको नहीं लगाएंगे तो किसको लगाएंगे, कृष्ण को बैठा दिया, पहले से कपड़े सुसज्जित तो ही हैं, और सुंदर उसे अंगरा किया, अपने स्पर्श पाकर के वो धन्य हो गई, उसके अंगों में अंगराग में जो सुगंध था कृष्ण के अंगों में तो उसे कोटि कोटि गुण सुगंध, और उनके अंग स्पर्श से हुआ क्या, जबकि कंस की मैया पद्मा बूढ़ी जरठ 102 वर्ष की, और उसको कृष्ण के दर्शन से जबकि काम का तरंग उठा, तो ये कैसे अपने काम को तरंग को रोक सकती है, बस मुग्ध हो गई, अपना हृदय कृष्ण को दे डाला, और जब अंगराग समाप्त हो गया कृष्ण को दर्पण दिखलाया बलदेव जी को दर्पण दिखलाया तो कृष्ण के दुपट्टे को उसने पकड़ लिया। कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए अपने काम भाव से, कुछ कहा भी आज हमारे घर में पधारिए। कृष्ण कहा तुम्हारा निमंत्रण हमने स्वीकार कर लिया, मैं किसी का निमंत्रण नहीं ठुकराता किसी का भी, तो तुम्हारा निमंत्रण कैसे ठुकराऊं, किंतु अभी नहीं, अभी समय आने पर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और तब कृष्ण ने क्या किया, देखते देखते ही वो तो कोई सोच नहीं सकती, झट कृष्ण ने उसको ठोड़ी में हाथ लगाया, अपने पैरों से उसके पैरों को दाब दिया और एक ठोड़ी में हाथ लगा दूसरा पीछे, न जाने क्या किया, एक सेकंड का अंदर बैन एकदम सीधी सरल हो गई। पहले कुबड़ी थी आठों अंगों की, कहां स्तन इधर में गया, कभी इधर में लग गया, उधर में हाथ हाथ और पैर सब, अब सुंदर मुखमंडल तो था ही और उसके सौंदर्य में चार चांद लग गए, परम रूपसी, कमर पतली हो गई, हस्तक्षल चौड़ा हो गया और परम सुंदरी जैसे सौंदर्य के जितने लक्षण है उसमें आ गए। अब तो रह नहीं सकी, उनके एक दुपट्टे को पकड़, उन्होंने कहा जा अभी ठीक है, अभी मैं जा रहा हूं नगर भ्रमण के लिए और इसके बाद में कल रंगशाला में जाऊंगा, इसके बाद में सारी व्यवस्था करके तुम्हारे घर में आऊंगा। अब शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भक्ति तीन प्रकार की होती है, प्रेम, और उनमें भी भक्ति में भी उच्च अवस्था में तीन प्रकार की न्यायिकाएं होती हैं। एक न्यायिका होती है साधारण, दूसरी होती है समंजसा, तीसरी होती है समर्था। समर्था माने क्या, ब्रज की गोपियां ही समर्थ हैं जो कृष्ण को अपने प्रेम से वशीभूत कर देती हैं। उनमें स्वार्थ का लेश नहीं है, काम का लेश नहीं है, जो कुछ करती हैं कृष्ण की सेवा के लिए करती हैं, अपना श्रृंगार तक भी जो करती हैं वो सब कुछ करती हैं बस कृष्ण की सेवा के लिए, और उनका प्रेम ऐसा समर्थ है जो कृष्ण को वशीभूत करने में समर्थ है, इसलिए ये समर्था है। कहीं भी कोई दाग नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए इनका ऐसा निश्चल प्रेम कृष्ण को भी वशीभूत करने में समर्थ है, इसलिए इसको समर्थारति कहते हैं। दूसरी बात, द्वारका की उनकी पत्नियां हैं महिषियां विवाहिता, इनमें भी प्रेम है, इनका प्रेम अनुराग तक है, कभी कभी महाभाव की छाया आती है, आभास, इनमें कृष्ण को प्रेम करती हैं किंतु इनका प्रेम विभाग है, विभक्त है, अपने बेटों पर है, पति पर भी है, इधर भी है, उधर घर के काम काजों में विभक्त है, और इनमें कुछ कभी कभी काम के द्वारा उनकी सेवा करेंगी, कुछ अपने भोग की लिप्सा भी थोड़ी सी है, आभास, किंतु जागतिक जैसा नहीं, नहीं तो मुक्ति नहीं हो सकता, भजन करके ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं, उनकी स्वाभाविक प्रेम में ही कुछ ऐसा है, अपने कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तो सब चीज है किंतु गोपियां जैसा समर्थ नहीं है जो कृष्ण को वशीभूत कर दें, क्योंकि इनका प्रेम ऐसा उच्च कोटि का महाभाव युक्त मादन मोद युक्त नहीं है, इसलिए समंजसा, समंजसा माने क्या कहते हैं, समंजस माने इसलिए समंजस है, यह समंजसा प्रेम है, जिस प्रेम में अपने भोग की लिप्सा हो, सुख की लिप्सा हो, कृष्ण से भी सुख की लालसा हो, तो इसको प्रेम की कोटि में कैसे रखेंगे, इसको प्रेम की कोटि में नहीं रखा जाएगा, किंतु यहां रखा है, जब इस जगत में जब हम भजन करते हैं साधन की स्थिति में, अपिचे सुदूर चारो भजते माम अनन्य भाव, साधुर मंतव्य सम्यक व्यवस्थो ही क्षेत्रम भवति धर्मात्मा स्वस्थ शांति निगच्छ। इस जगत में भी एकांतिक रूप में कृष्ण का आश्रय करने वाला, यदि उसमें दुराचार भी है तो उसको साधु समझो, शीघ्र ही सबको छोड़ करके वो शुद्ध परम भक्त बन जाएगा, धर्मात्मा बन जाएगा। उसका दोष मत देखो, उसका निंदा मत करो। तो इस जगत में ही ऐसी है, तो उस जगत में यदि एक शत्रु है उतना उनको मारने के लिए आई तभी उसको सदगति दे दी, अगासुर बकासुर को सदगति दे दी, शत्रु भाव से, काम भाव से, भक्ति भाव से, भय से, क्रोध से, स्नेह से, संबंध से, जैसे भी कृष्ण के साथ में संबंध हो और उनका भजन करे तो कृष्ण उनको सदगति दे देते हैं। तो यदि कंस और जितने शत्रु भाव से भजन करना, शिशुपाल इत्यादि को कृष्ण ने सदगति दे दी, किसी को अपना द्वारपाल जो थे जय विजय उनको वो गति में पहुंचा दिया और सबको गति दी, तो काम भाव से ही हो, यदि कृष्ण को उसने चाही, काम भाव था ये बात ठीक है, कृष्ण को चाह, अब ये देखना है जो कृष्ण को छोड़कर के और किसी को चाह रही है कि नहीं, ये देखो उसका प्रेम एकांतिक है या बहुगत है। वो कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण से काम चाह बात ठीक है, और उसके द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करना और अपने को भी प्रसन्न करना चाहती है, भोग की लिप्सा है, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त और किसी के पास में, कंस इत्यादि के पास में उसकी प्रीति है कि नहीं। अच्छा, कंस के तो यहाँ रोज रोज जाती थी तो प्रीति क्यों नहीं है? वो तो राजा था, उसके बात होकर के जाती थी, उसे कुछ पैसे मिलते थे, अपना रोजगार कर करके अपना जीवन का निर्वाह करती थी, किंतु उसके प्रति जो प्रेम या कंस का भी नहीं उसके प्रति, क्यों? और इसकी कितनी दासियां इससे लाखों गुण सुंदर हैं, तो इसे क्यों वो अपनी प्रीति करने जाए? इसलिए कंस का भी इसके प्रति, ये बड़ी सुंदर सेवा करती है और ये बड़ी आर्टिस्ट है, ये तो उसके प्रति था, इसलिए काफी पैसा देता था, जिससे उसके जीवन, उसके लिए भी राजभवन बना दिया था, अपने नौकरानी को भी, किंतु उसके प्रति कोई बुरी नीयत नहीं थी और इसकी भी उस कंस के प्रति कोई ऐसा नहीं था। इसे इसका प्रेम जो था, चाहे काम भाव था, ये केवल कृष्ण ही के प्रति प्रथम बार हुआ, इसके पहले तक अभी तो 12-14 वर्ष की अभी थी, अभी प्रेम अभी काम भाव भी विकसित नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ, इसका भी कारण है। क्या कारण? रामलीला, वो समय सुपर्णखा बन करके राम के पास गई, उनका रूप देकर के लुप्त हो गई और अपने को समर्पण कर दिया। जो कृष्ण को समर्पण कर देते हैं राम को, फिर उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब देखा, यदि हमको इसने दे दिया और हमने उसको ग्रहण कर लिया, उसके प्रेम को, अब ये किसको साथ में प्रेम नहीं करने देंगे, एकांतिक बना लेंगे, इसलिए उसको नाक कान काट लिए। जब किसी से ये प्रेम नहीं करेगी, कोई दूसरा इसको प्रेम न करे, तो वो तो वैसे ही बीत गया है ना। और दूसरे समय में अब कुब्जा बनाया, तब तक के लिए कुब्जा बनाया जब तक मैं आ नहीं जाऊं और हमको समर्पण किया, इसको तो ग्रहण करना है, इसे तो ग्रहण करना है, तो अब इसको ग्रहण कर ही लिया है और साक्षात रूप में ग्रहण करना है, तो तब तक के लिए इसको ऐसे बनाऊं कुब्जा कुवर, जो कोई इसे प्रेम न करे, आइए भी किसी से प्रेम न करे, इसलिए उसको कुब्जा बना दिया। और जब समर्पण, जब अपना इस शरीर को भी समर्पण कर दिया, तो उन्होंने क्या किया कृष्ण, ऐसा कर करके उसको परम सुंदरी बना दिया और उसको ग्रहण कर लिया। अब इसको गति क्या होगी बतलाओ? उस जगत में, गोलोक में, ये कुब्जा बड़ी सुंदरी हो करके जो उसने इच्छा की वो भी होगा, किंतु महिषी की दासी बन सकती है, किंतु अब उसका स्थान ही अलग है, मथुरा, इसलिए कृष्ण ने उसे ग्रहण कर लिया है और उसको वैकुंठ से ऊपर की गति दी सदा के लिए। उनके साथ में नहीं रहेगी, इसलिए कहा कि ये मथुरा में रहेगी और ये साधारणी नायिका रहेगी, इसलिए इसको साधारणी नायिका ग्रहण कर लिया, क्योंकि इसमें कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरे में काम नहीं है। तो जिसको कृष्ण के प्रति काम हो और कृष्ण के अतिरिक्त नहीं हो, इसलिए इनको नायिका मान लिया। अरे भाई, वहाँ द्वारका मथुरा में सभी क्या वैसे ही है? जैसे ब्रज है, गोपी सब ब्रज में माधव की भक्ति वहाँ तक है, अगासुर बकासुर तो वहाँ है, तो वो उनकी कोटी में, गोपियों की कोटी में आएंगे, गोपों की। हाँ, तो रति के विभाग में भी वो उनकी कोटी में नहीं आएगी। मथुरा और द्वारका को तुम तो उस समय एक मान लो, समंजसा से नीचे की गति इसकी होगी, साधारणी लाइफ। इस तरह से कृष्ण ने उसको ये भाव दे करके उससे काफी प्रेम अंगीकार कर दिया, निर्मल बना करके गोलोक में उसको कोई गति दे दी। गौर प्रमाण। अब इसके बाद में कल मैं सवेरे वृंदावन जाऊंगा 9 बजे के करीब, और 4 बजे के पहले, 4 बजे 5 बजे तक लौट आऊंगा। यहाँ पर सभा होगी, ब्रह्मचारी लोग यहाँ पर नीचे ही सब व्यवस्था करेंगे। हम जैसे कि स्वागत के समय होता है, जब पहली बार गया वहाँ पर वैसे ही बिछा देंगे। ये रमेश और वो क्या है पुरंदर इत्यादि, ये सब व्यवस्था करें। नीचे जैसे तकिए धोता दे देना, किसी को हमने निमंत्रण नहीं किया है, तो अभी सारे लोग आएंगे और हम लोगों में जो रहेंगे वही 2-4 वक्तृता करेंगे, और उसके बाद में सबको प्रसाद उसाद कुछ दे देंगे। और फिर परसों सुबह में मैं दिल्ली के लिए रवाना होऊंगा, और वहाँ एक दिन रह करके दूसरे दिन बॉम्बे में जाएंगे। 6-7 दिन का वहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है, और इसके बाद में वहाँ से हम लोग विदेश चले जाएंगे। व्यास पूजा से करीब करीब 10-12 दिन पहले हम आएंगे। इसके पहले हमारे ब्रह्मचारी लोग नियमित रूप में, जैसे ये आरती इत्यादि हो रही है, नियमित रूप में आएंगे, हरिनाम ठीक से करेंगे, परस्पर कोई गोलमाल नहीं करेंगे। विशेष करके मैं निश्चिंत रहूँ जिस हाँ सब काम ठीक चल रहा है, आरती नियमित रूप से सभी लोग आएंगे, और नियमित रूप में पाठ प्रवचन हो सवेरे, और लोग पाठ कुछ लोग करेंगे साधारण रूप में होगा, और शाम को प्रेमानंद जी हैं या और कौन है जो वो है, या जो हमारे परमेश्वरी जी हैं, कालाचांद जी हैं सबसे अच्छे, कालाचांद जी हैं, वहाँ पर प्रवचन करेंगे शाम को, और सवेरे में ये ब्रह्मचारी लोग सब पाठ करेंगे। उसमें चैतन्य भागवत है, चैतन्य चैतामृत है, तेलुगु धर्म है, ये सब विधिवत सब पाठ हो। ये हमारे जो कीर्तन वाले हैं नन्नूमल जी हैं, दामोदर जी और लोहनमन सुखा जी हैं, इनके भैया हैं कौन, मनोहर लाल जी, ये सब आएंगे, और यहाँ पर कीर्तन इत्यादि व्यवस्था रहेगी। वृंदावन में वैसे ही चलेगा, और हमारे तो डिवोटीज, वेस्टर्न डिवोटीज और ईस्टर्न डिवोटीज, दे ऑल्सो दोज विल बी हियर, दे शुड अटेंड एवरीथिंग हियर आर वृंदावन, एंड दोज हु आर गोइंग विथ मी इन अवर टूर, दे विल बी अस, सो एवरीथिंग शुड गो ऑन very easily. I think that जा रहे हैं जैसे बहुत से, तो आप लोग सभी जैसा होगा वैसा लोग करेंगे, और व्यवस्था ठीक रहे। हम सुने कि हाँ यहाँ पर भी ठीक चल रहा है, और हम भी संवाद भी इसी में देंगे। 2 महीने का समय बहुत कम है, झट चले आए। गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। Thank you.
Thank you.